हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। करिश्मा जी ने तारा परी को अमन के पता के लापता होने का पूरा सच बताया। तारा परी ने उनकी मदद का आश्वासन दिया, किंतु करिश्मा जी ने मना कर दिया। तुम्हें अभी अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, और रही बात इसके दादाजी को ढूंढने की, तो जब ये पैदा होगा ये खुद अपने दादा को ढूंढ लेगा। करिश्मा जी की बात सुनकर तारा मुस्कुराई। उसने सोचा कि वो अब करिश्मा जी की मदद खुलेआम नहीं बल्कि चुपके से करेगी। अमन के ऑफिस में पुलिस को देखकर अमन हैरान हुआ। पुलिस ने बताया कि राधिका की निर्मम हत्या हुई है। अमन बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि किसी काली शक्ति ने राधिका का मर्डर किया होगा। परेशान होकर उसने तारा को फ़ोन किया। मैं घर आ रहा हूँ, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। अमन को लग रहा था कि उसे हर पल तारा के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसे शक हो गया था कि तारा और उसके होने वाले बच्चे पर काली शक्ति का साया मंडरा रहा है। इसलिए वो तारा को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता था। हालांकि उसे राधिका के घर भी जाना था, लेकिन उसने सोचा कि वो तारा के साथ ही जाएगा और उसे सारी सच्चाई बताएगा, काली शक्तियों के उसके पीछे पड़ने की बात। उसे अपना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत थी। जल्दी ही अमन घर के लिए रवाना हो गया। विक्रांत रंधावा ने अमन के कहने पर ऑफिस में 3 दिन की छुट्टी घोषित कर दी। वो भी जल्दी ही घर के लिए रवाना हो गया, क्योंकि वो भी तारा को देखे बिना नहीं रह पा रहा था। काली शक्तियों का मालिक अमित अपने गुरु से मिलने काली पहाड़ी पर पहुंचा। उसे लग रहा था कि उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसमें किसी और का हाथ है, कोई ऐसी शक्ति जिसका मुकाबला शायद वो खुद भी नहीं कर सकता। अपने सवालों के जवाब पाने के लिए अमित अपने गुरु के पास पहुंचा, लेकिन उसके गुरु ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। ये सुनकर अमित को बहुत हैरानी हुई। कुछ देर बाद सर्प महाराज, जो काली पहाड़ी के गुरु के पास ही रहते थे, अमित से मिले। अमित को देखते ही सर्प महाराज को पिछली बात याद आ गई। पिछली बार जब अमित आया था तो उसने उनकी पत्नी को बहुत बुरी तरह घूर रहा था। उसका मन करता था कि अमित को पहाड़ी से नीचे फेंक दे या अपने फन से डसकर उसकी जान ले ले, लेकिन वो खुद काली शक्तियों का गुलाम था। जब तक काली शक्तियों का गुरु सर्प महाराज को आज़ाद नहीं करता, तब तक उन्हें उनकी गुलामी करनी ही थी। सर्प महाराज ने अमित से कहा, गुरुजी का आदेश है कि आप उनका इंतज़ार करें। गुरुजी अभी गहन तपस्या में हैं, और जैसे ही उनकी तपस्या पूरी होगी वे आपसे मिलेंगे। अमित के पास काली पहाड़ी पर इंतज़ार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन जैसे ही उसे सर्प महाराज की महारानी का ख्याल आया, वो खतरनाक तरीके से मुस्कुराया। उसने सोचा कि तब तक उसका मनोरंजन क्यों न कर लिया जाए। अमित जानता था कि उसके पास कितनी शक्तियां हैं, और अपनी शक्तियों के बल पर वो किसी को भी अपना बना सकता था, यहां तक कि सर्प महाराज को भी हरा सकता था। कुछ सोचकर अमित ने सर्प महाराज से कहा, अच्छा तो गुरुजी अगर अभी व्यस्त हैं तो तब तक मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मनोरंजन का कुछ इंतज़ाम करें। यहाँ सांपों से एक अजीब सी बदबू आती है जो मुझे बहुत बुरी लगती है। मैं अमित हूँ, काली शक्तियों का मालिक। मेरे पास अनलिमिटेड शक्तियाँ हैं, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो ये मेरा हुक्म है कि तुम मेरे लिए मनोरंजन का इंतज़ाम करो। सर्प महाराज अमित की बात समझ गया था, लेकिन अब उसके पास उसका हुक्म मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। काली पहाड़ी के गुरु ने उसे साफ साफ आदेश दिया था कि जब तक वो उनके गुलाम हैं तब तक उन्हें और उनके साथ काम करने वालों के हुक्म मानने होंगे, चाहे उसमें उनकी मर्जी हो या ना हो। सर्प महाराज का दिल तो करता था कि अमित को मनोरंजन की जगह भयानक मौत दे दे, लेकिन वो अपनी भावनाओं पर काबू रखे हुए था। जल्दी ही सर्प महाराज ने अपने सभी सांपों को हुक्म दे दिया कि वे नाच गाने का प्रबंध करें और अमित के लिए खाने पीने का भी इंतजाम करें। जब तक उनके गुरु तपस्या से बाहर नहीं आते, तब तक उन्हें अमित का ध्यान रखना था, ये उनका कर्तव्य था। दूसरी ओर अमन की घबराई हुई आवाज़ सुनकर तारा परी बेचैन हो गई। वो सोचने लगी कि आखिर क्या वजह थी कि अमन इतने घबराए हुए थे और कह रहे थे, मैं घर आ रहा हूँ। अभी तो दोपहर ही हुई थी, इतनी जल्दी वो घर क्यों आ रहा था? ऑफिस खत्म होने में तो अभी 6-7 घंटे बाकी थे। तारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं अमन को कुछ हो तो नहीं गया है? अमन ठीक तो होंगे ना? और वैसे भी मुझे अमन के साथ रहना था, उनकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि उस दुष्ट राक्षस की नज़र अब अमन पर ही थी। वो अमन को ही अपना शिकार बनाना चाहेगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अमन को नहीं आने दूंगी। मैं अब उससे मोहब्बत करने लगी हूँ, और मैं अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से नहीं मिटने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे राक्षस के अंश से क्यों न लड़ना पड़ जाए, चाहे अपनी जान क्यों न देनी पड़ जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। तारा ने मन ही मन ये इरादा कर लिया। फिर कुछ सोचकर वो अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी, क्योंकि अमन ने फोन पर उसे कहा था कि वो तैयार रहे, क्योंकि उसे उसके साथ कहीं जाना है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि कहाँ जाना है। करिश्मा जी ने तारा के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया था। जैसे ही तारा ने करिश्मा जी को बताया कि अमन उसे लेने आ रहा है, करिश्मा मुस्कुराई। तो बेटा, जरूर उसका मन नहीं लग रहा होगा, इसीलिए वो तुम्हें लेने आ रहा है। तुम दोनों अच्छे से अपना ध्यान रखना, और सबसे ज्यादा मेरे होने वाले वंशज का ध्यान रखना, ओके? करिश्मा जी मुस्कुराते हुए बोली। तारा उन्हें प्यार से देखने लगी और सोचने लगी कि उनकी मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है, जिसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन तारा उसे अच्छी तरह देख पा रही थी। तारा ने सोचा कि वो अमन को इस बारे में नहीं बताएगी और अकेले ही अमन के पिता के लापता होने की जांच करेगी। दूसरी ओर, सर्प महाराज ने काली शक्तियों के मालिक अमित के लिए बहुत ही खूबसूरत तैयारी करवाई थी। उसे अलग अलग तरह के पकवान परोसे गए थे। साथ ही मनोरंजन के लिए कुछ इच्छाधारी नागिनों को सुंदर वेशभूषा में नृत्य करते हुए बुलाया गया था। अमित ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसे एक अलग तरह की राजा जैसी फीलिंग आ रही थी। उसे लग रहा था कि ये सब उसकी प्रजा है और वो उनका राजा है। काली शक्तियों का मालिक अमित बुरी तरह हंसने लगा। वो इच्छाधारी नागिनों के शरीर को देख रहा था। उनके कपड़ों के नीचे से उनकी कमर और पेट का काफी हिस्सा दिखाई दे रहा था। अमित की नज़र सिर्फ उन पर ही थी, लेकिन काली शक्ति के मालिक अमित ने अपने आप पर काबू किया हुआ था, क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ महाराज की महारानी पर थी, जो कमाल की खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर अमित पागल सा हो गया था। इसलिए उसने सोचा कि अगर वो आज इस काली पहाड़ी पर आया है, तो क्यों ना महारानी की जवानी का स्वाद भी चख लिया जाए। उसने बहुत ही गंदे तरीके से उसके बारे में बोला। सर्प महाराज को उसकी नीयत का पता लग गया। कुछ सोचकर उसने अपनी महारानी को वहाँ से कहीं और छिपा दिया, क्योंकि सर्प महाराज की महारानी कोई आम नागिन नहीं थी। केवल एक श्राप के कारण वे लोग काली पहाड़ी पर रहने के लिए मजबूर थे। वहाँ लाखों करोड़ों सांप थे, जो सभी इंसानी रूप भी धारण कर लेते थे, लेकिन सिर्फ अपने सरदार महाराज के आदेश पर। उनका अपना एक अलग कबीला था, जहाँ वे सभी रहते थे। एक दिन जब सर्प महाराज अपनी प्रेमिका से मिलने काली पहाड़ी के पास गए, तब उनसे गलती से तपस्या कर रहे काली शक्तियों के गुरु की तपस्या भंग हो गई थी,
जिसके चलते काली शक्तियों के गुरु ने उन्हें श्राप दिया कि जिसकी मोहब्बत में तुमने मेरी तपस्या बिगाड़ी है, वो तुमसे दूर हो जाएगी और तुम उसके शरीर को पाने के लिए पल पल तड़पोगे, लेकिन तुम उसे नहीं पा पाओगे। जैसे ही सर्प महाराज ने उस काले गुरु का श्राप सुना, उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसका कोई इरादा नहीं था कि वो इस तरह से काली शक्तियों के गुरु की तपस्या को भंग करे, लेकिन फिर